Okay, so brothers and sisters, it is truly a joy to be able to be with you.
भाई और बहनों, ये बहुत ही आनंद की बात है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ आज.
And after the wonderful greetings and introduction, there's one more person we must introduce.
और परिचय के बाद और तो स्वागत के बाद एक और व्यक्ति है या सज्जन है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए.
In fact, he is the guest of honor.
और सबसे असल में बात यह है कि वो जो है मुख्य अतिथि हैं हमारे.
We want to roll out the carpet. Do you have that custom for prestigious people?
और जैसे कोई खास आदमी आता मेहमान आता है तो उसके लिए जैसे हम पलकें बिछा देते हैं तो इस तरीके का स्वागत हमें करना चाहिए.
That the Lord Jesus Christ may come in and minister to our souls through His Word.
और आइए हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें ताकि वो हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सके अपने पवित्र वचन के माध्यम से.
I understand that Uncle Andy's wife was sick and therefore he was unable to be with you.
और आप लोगों को बता दूं कि जो पास्टर एंडी हैं या अंकल एंडी हैं वो हमेशा आते थे प्रचार करने लेकिन इस बार नहीं है पाए और कारण है उनकी पत्नी बीमार है.
So let us remember to pray for his family and for his wife.
तो हम उनके परिवार के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थनाओं में याद रखेंगे उनको.
And in his absence, it truly is a privilege that I've had the opportunity to come in his place and minister the word of God.
और उनकी अनुपस्थिति में ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं प्रभु का वचन आप लोगों के साथ में बांट सकता हूँ.
Just a little bit more introduction about myself so that you may know as we share the time together.
और थोड़ा सा और बता देता हूँ अपने बारे में ताकि आप मुझे और भी ज्यादा जान सके.
I was raised in a religious home, but not necessarily a Christian home.
और मेरा जो लालन पालन हुआ है वो एक धार्मिक परिवार में हुआ लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जैसे सच्चे मसीह परिवार में हुआ हो.
Though I had many church experiences, it wasn't. Should I stop there?
No.
Though I had many church experiences as a child, it wasn't until 19 years old that I was converted.
और मैं हालांकि चर्च में गया बहुत बार अनुभव की कुछ चीजें लेकिन जो 19 साल की उम्र में जो है मुझे सच में मेरा प्रभु ने जीवन बदल दिया.
Through the influence of some of my friends at the university.
और एक विश्वविद्यालय के कुछ मेरे दोस्त थे सहपाठी थे उनके प्रभाव के कारण से मेरा जीवन में परिवर्तन आया.
They challenged me to read the New Testament.
उन्होंने जो है इनको चुनौती दी कि भाई आप प्रभु का वचन पढ़ें नया नियम पढ़ें.
And as I read the Bible, though I thought I might have been a Christian before, I became very concerned.
और पहले मुझे लगता था कि मैं मसीह हूँ लेकिन जब मैं प्रभु का वचन पढ़ने लगा तो मुझे कुछ आभास हुआ.
And the main concern was that the Jesus that I thought I knew as a child was very different than the Jesus I found in Scripture.
और जो वचन जब मैंने वचन पढ़ा तो जो जिस मसीह के बारे में मैं सोचता था या जानता था वो बाइबल के मसीह से काफी अलग था.
There were two main things that I learned about Jesus as I read through the New Testament.
और जब मैंने नए नियम में से पढ़ता गया मैं तो मुझे दो खास बातें यहाँ से मिली.
Those two things were the gospel of Jesus Christ and the glory of Jesus Christ.
और ये जो दो चीजें थी जो सुसमाचारों में से या मसीह नए नियम में से इनको मिली वो थी एक तो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का और उसकी महिमा. इनको दो चीजें अच्छी लगी.
It seemed that every page was concerned about the gospel of Jesus and every person who knew him was concerned about the glory of Jesus.
और जो पन्ने इन्होंने पढ़े प्रभु के वचन में ऐसा लगता था कि जैसे जो हर एक पन्ना है वो सुसमाचारों से संबंध रखता है और हर एक पन्ना जो है प्रभु की महिमा करने के लिए संबंध रखता है.
And although I may have called myself a Christian prior to that time,
और उस समय से पहले हालांकि मैंने अपने आप को मसीह तो कहलाया होगा,
I certainly was not concerned about the gospel and the glory of Jesus Christ.
और मैं मसीह तो कहता था कहलाता था लेकिन प्रभु के सुसमाचार और उसकी महिमा से मेरा खास तवज्जो नहीं थी.
So at age 19, I was brought to understand that I needed a relationship with this Jesus, not the Jesus of my imagination.
तो 19 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ में आने लगी कि जो जो मसीह के बारे में मैं सोचता हूँ वो नहीं बल्कि जो बाइबल में मसीह है तो उसके बारे में मैं ज्यादा सोचूं और ज्यादा उसको महिमा दूं.
And so in the years since my conversion, there have been two main things the Lord has been showing me from His Word.
तो मेरे जीवन के जब से मैं बदला या मसीह बना तब से मेरे जीवन में दो बातें प्रमुख रही हैं. वो पहला है सुसमाचार और दूसरा है
And those are the two things.
प्रभु की महिमा.
Those are the two things.
आप लोग मेरे साथ रहो.
Those are the two things I would like for us to consider in this conference together.
तो ये दो ही चीजें हैं. पहली बात कौन सी थी? सुसमाचार और दूसरी है प्रभु की महिमा. इन्हीं बातों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करेंगे.
And I trust that it will not surprise you that those two things are the gospel and the glory of Jesus Christ.
और मुझे लगता है कि आप अचंभा नहीं करेंगे इस बात से ये दोनों चीजें सुनकर के.
So for the theme of our conference, let us consider the gospel of Jesus and the glory of Jesus.
तो हमारे जो कॉन्फ्रेंस है उसका जो थीम है या शीर्षक रहेगा वो यीशु मसीह का सुसमाचार और परमेश्वर की महिमा.
As I'm a pastor in America,
और जब मैं पास्टर का कार्य करता हूँ अमेरिका में,
in every sermon, in every Bible study, in every counseling opportunity,
और हर एक बाइबल के अध्ययन में और परामर्श के कार्य में,
as we're evangelizing,
और जब हम प्रचार करते हैं,
as we're caring for the suffering believers,
और जब हम दुखी या यातना पाए हुए मसीहों के बारे में सेवा करते हैं तो,
as we're trying to encourage our family, our spouse and our children,
और जब हम अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को या पति को हम लोग उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं तो,
what we want to show most of all is the gospel of Jesus and the glory of Jesus.
तो हम इन सब को जो है ये दो चीजें दिखाना चाहते हैं. एक तो प्रभु का सुसमाचार और दूसरा प्रभु की महिमा.
For the Christian and for the non-Christian, everyone needs to see the gospel and glory of Jesus Christ.
मसीह लोगों के लिए भी और गैर मसीह लोगों के लिए भी ये दो ही प्रमुख बातें हैं जो हमें बतानी है या सुनानी है.
So we will take this theme primarily from the Gospel of John, chapter 1.
तो ये जो थीम है हमारा शीर्षक है ये हम मुख्य तौर से यूहन्ना का एक अध्याय में से हम लोग निकालेंगे.
Okay? And for our opening session, I want to preview what we will come back and more closely consider.
तो हम जो है थोड़ा सा रूपरेखा आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या देखेंगे और फिर दोबारा से हम लोग वहीं पर गहराई से देखते हुए चलेंगे वचन को.
And in every session,
और हर एक सेशन में
we will focus again and again on the gospel and glory of Jesus Christ.
और हम बार बार यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रभु की महिमा पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
And we will see this from John chapter 1.
और ये हम यूहन्ना के सुसमाचार में से देखेंगे.
So, for our introduction, let us begin by reading verse 1 through verse 18.
तो आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे एक अध्याय एक वचन से लेकर के और 18 तक. यूहन्ना का सुसमाचार एक अध्याय एक पद से 18 तक.
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया. एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था. वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास न आए. वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी. वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया।
थैंक यू।
आमेन। फ्रेंड्स, दिस इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड।
ये वचन है मित्रों परमेश्वर का जीवित वचन।
And as a way to introduce our conference theme, let us lay the foundation.
और हमारे कॉन्फ्रेंस का जो शीर्षक है उसको बताने के लिए आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
The first thing we need to understand is that the Bible is not mainly about us.
और पहली बात जो है सीखने की वो ये है कि जो बाइबल है वो मुख्य रूप से हमारे बारे में नहीं है।
The Bible is mainly about God's work through Jesus Christ.
और बाइबल जो है मुख्य रूप से ये परमेश्वर का कार्य है यीशु मसीह के माध्यम से।
In fact, in this same chapter, if we go to verse 45, we will see this truth.
और इसी एक अध्याय में यूहन्ना के और 45 पद में अगर आप देखेंगे तो वहां पर यही सच्चाई लिखी हुई है।
Please read verse 45, one of the brothers.
एक कोई एक भाई 45 पद पढ़ें।
फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी।
This one verse is pregnant with lots of meaning.
और ये जो एक पद है ये बहुत सारी सच्चाइयों या अर्थों से जैसे गर्भवती होती है ऐसे भरा हुआ है।
In the context, Jesus has just called Philip to be a disciple.
और इस संदर्भ में जो है यीशु मसीह फिलिप को बुलाते हैं चेला बनने के लिए।
You can see that in verse 43.
और 43 पद में आप ये सच्चाई देख सकते हैं।
But when Jesus called Philip, Philip wanted to go find his friend Nathanael.
जब यीशु मसीह ने फिलिपुस को पा लिया तो फिलिपुस जो है अपने मित्र नथेनियल को लेने चला गया।
But when Philip finds Nathanael, notice carefully how Philip encourages Nathanael to come to Christ.
और जब फिलिप ने नथेनियल को पाया तो आप देखिए कि वो नथेनियल को किस प्रकार से उत्साहित करता है मसीह के पास आने के लिए।
In the verse that our brother read,
और जिस पद को भाई ने पढ़ा
verse 45,
वो 45 पद,
Philip points first to the Bible before he points to Jesus.
और फिलिप जो है नथेनियल को बाइबल की ओर मोड़ता है या आकर्षित करता है इससे पहले कि वो मसीह के बारे में बताए उसको।
He says first, we have found the one.
वो कहता है कि हमें वो है मिल गया है।
The one about whom Moses in the law and all the prophets wrote.
और हमें वो मिल गया है जिसके बारे में नबियों ने और मूसा ने लिखा है।
Before we move beyond that phrase, let's just remember exactly what that means.
और इससे पहले कि हम और एक कदम आगे बढ़ें, तो ये देख लें कि जो वो जो पद है या मुहावरा है, उसका क्या अर्थ है यहाँ पर?
Do you remember which books of the Bible Moses wrote?
क्या आपको याद है कि आपको पता है कि मोसेस ने मूसा ने कौन सी पुस्तकें लिखी?
बताइए. Let's name them. Yeah, let's list them.
आइए बताइए. Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Moses wrote those books.
और मूसा ने जो है वो पुस्तकें लिखी, पांच पुस्तकें लिखी.
Okay? This verse also says that Philip said that the writings of Moses
और फिलिप जो कहता है कि वो मूसा की व्यवस्था
and the writings of the prophets
और नबियों की व्यवस्था नबियों की पुस्तकें.
Now this quiz, this test will be a little more difficult than Moses' test.
और मूसा के जो जांच हुई थी या परख हुई थी ये टेस्ट उससे भी और कठोर है कड़ा है.
There are 17 prophetic books in the Old Testament.
और 17 prophetic meaning
prophets.
नबियों की पुस्तकें हैं पुराने नियम में 17.
Okay. We call them the major prophets and the minor prophets.
तो मुख्य भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता.
Yeah. And I don't know in Hindi if it's major and minor, but major simply means longer, minor simply means shorter, and there are 17.
तो 17 हैं जो भविष्यद्वक्ता हैं और उनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं.
Okay, so friends, let's see if we can work together without looking to list all 17.
तो क्या संभव है कि हम लोग उन 17 के नाम यहाँ पर बिना देखे बताएं?
Okay, starting with Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Jonah. Yes, brother, stand and do it for everyone, okay? He did it. Okay, tell everyone.
Yesaya,
Jeremiah, Yehezkel, Daniel, Hosea, Amos, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Habakkuk.
Very good. Okay, notice that our brother Philip seemed, even though he did not have the Bible in his hand, it seems that he picked up the Bible.
और यहाँ पर हमें लगता है जैसे फिलिप के पास में बाइबल ना हो लेकिन फिर भी उसने जैसे ऐसे बताया हो.
And as he goes to his friend Nathaniel,
और जब वो नथेनियल अपने मित्र के पास जाता है,
it's as if Philip says, you won't believe it.
और जैसे कि फिलिप कह रहा हो कि ओ तुम्हें विश्वास नहीं होगा जो बात मैं बता रहा हूँ.
It's almost as if he's saying, it's amazing.
और ये बड़ा ही अद्भुत है.
He says, we found the person that the entire Bible is about.
और हमें वो व्यक्ति मिल गया है जिसके बारे में संपूर्ण बाइबल बात करती है.
But notice in verse 45.
लेकिन 45 पद में ही आप फिर से ध्यान दीजिए.
How he describes Jesus.
वो यीशु प्रभु को कैसे वर्णन करता है.
He tells us the place that he's born and he tells us the person from whom he was raised.
और वो यहाँ पर बताता है कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ और वो किस नगर में बड़ा हुआ.
Can you see in the verse?
क्या आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि वो किस जगह बताया गया?
From the city of Nazareth. Nazareth. And his earthly father is Joseph. Okay? So he looked like an ordinary man from a place they would recognize and raised by a father they would recognize.
तो ये जो दोनों बातें हैं कि जिस जगह में वो पैदा हुआ मसीह और जो उनके धरती के जो पिता थे उन दोनों चीजों को देख करके उनका जन्म स्थान और उनके पिता को देख करके कोई भी आदमी ये कह सकता है कि वो एक साधारण इंसान थे.
Okay, this little verse is a good example of faithful Bible preaching.
और ये जो अगर 45 पद जो है इसी को लेकर के आप एक अच्छा प्रचार कर सकते हैं.
Wherever we may be reading or preaching or explaining, we should always show its relationship to Jesus Christ.
और जहां भी हम इसका इस पद का प्रचार कर रहे हों तो हमें हमेशा दिखाना चाहिए कि इसका जो संबंध है यीशु मसीह के साथ में वो हमें दिखाना चाहिए.
Okay, let us just turn back one page to the Gospel of Luke chapter 24.
और एक पन्ना पीछे पलट लीजिए और ये लूका का 24 अध्याय देखेंगे.
At the beginning of the chapter, I want you to tell me what very significant event occurred. Beginning of Luke 24, a very significant event occurred.
24 अध्याय में क्या घटना हुई, अद्भुत घटना जिसको आप बता सकते हैं?
Yes, the most important event in the history of the world.
और संसार के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान.
Yes, the cross is very important.
क्रॉस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है.
We cannot overemphasize the importance of the cross.
और हम जो क्रूस का जो महत्व है उसको और ज्यादा नहीं बता सकते.
This is where Jesus paid for our sins.
असल में यही वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सब कुछ छुड़ा, अपना प्राण दे दिया.
This is where Jesus satisfied the wrath of God.
और यही वो जगह है जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के क्रोध को शांत किया.
But Paul said, if Jesus is not raised, we're still in our sins.
लेकिन जो पौलुस हैं वो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह नहीं उठाया गया मृतकों में से तो हमारा जो प्रचार है वो व्यर्थ है.
So the resurrection of Jesus is the sign, the seal of our salvation.
तो जो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे उद्धार का सील भी है, मोहर भी है और साइन भी है, उसका चिन्ह भी है.
It is the proof to the whole world that God accepted the sacrifice of Jesus for us.
और ये इस बात का प्रमाण भी है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के रूप में हमारे जो छुड़ौती थी, जो मूल्य था वो ग्रहण कर लिया.
Okay, brothers and sisters, many of you know this passage, but let's just review it briefly.
और आप भाई और बहनों इस शायद इस पैसेज से परिचित होंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं संक्षेप में.
After Jesus was raised from the dead,
और यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद में,
he's found walking with two men on the road to Emmaus.
वो इमाउस के रास्ते पर दो लोगों से बातचीत करते हुए चलता है.
These two men are discouraged.
और वो जो दो लोग हैं दोनों बहुत बड़े उदास हैं, हतोत्साहित हैं.
They were speaking to one another about the death of Jesus.
और वो एक दूसरे से यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे.
And Jesus came into their conversation.
और यीशु मसीह उनकी बातचीत में आ गया, उनके बीच में आ गया, घुल मिल गया.
He began to walk with them on the road.
और वो रोड पर, सड़क पर उनके साथ चलने लगा.
And he began to discuss with them about the death of Christ.
और वो मसीह की मृत्यु के बारे में उनसे बातें करने लगा.
But I want you to notice verse 23 through 25.
लेकिन मैं 23 से 25 तक चाहता हूं कि हम लोग देख लें. Luke 24.
I'm sorry, verse 25 to 27.
25 से 27 तक.
25, 26, 27. पढ़ दे कोई भी. तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि यह सब दुख उठाएं और अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया.
थैंक यू ब्रदर. ओके, इन वर्स 25
और 25 पद में
Jesus rebukes the men.
और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को डांटते हैं.
He tells them that they have failed to believe something.
वो प्रभु यीशु कहते हैं उन लोगों से कि उन्होंने विश्वास करने में कुछ चूक की है किसी महत्वपूर्ण बात में.
According to verse 25, what did they fail to believe?
और 25 पद के अनुसार ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया था, बता सकते हैं?
Can you see? Yeah, the message of the prophets.
और उन्होंने जो है भविष्यद्वक्ताओं के संदेश पर विश्वास नहीं किया था.
And we know that we're talking about the writings of the prophets, not only the preaching of the prophets.
और वो जो है जो भविष्यद्वक्ताओं के जो लेख थे उनके बारे में बात कर रहे थे, उनके प्रचार के बारे में ही नहीं.
This becomes clear in verse 27.
और ये 27 पद में और साफ हो जाता है.
Once again, we see Moses and all the prophets.
और वहां पर भी हम देखते हैं मूसा और दूसरे नबी या भविष्यद्वक्ता.
Now in verse 27, I want you to pay careful attention to the word all. All the prophets.
और 27 पद में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब जो शब्द है नबियों से पहले उसको आप ध्यान से देखें.
And notice what Jesus does with the entire Old Testament.
और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह पूरे पुराने पवित्र शास्त्र से क्या करते हैं.
Verse 27.
27 पद में.
Jesus explained to the men all the things about himself from the scriptures.
और प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से आरंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया.
So friends, we're again just laying the foundation for our conference that the Bible is not mainly about us. It's mainly about Jesus Christ.
तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इसका आप जो थीम है या शीर्षक है उसको ध्यान रखें कि हम उसमें बात कर रहे हैं कि जो पवित्र बाइबल है वो हमारे बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर के बारे में है.
But I've said the two specific things we want to focus on is the gospel and the glory of Christ.
लेकिन मैंने कहा आपको कि हम केवल दो बातों पर ध्यान देंगे जो मुख्य हैं और वो हैं परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर की महिमा.
I want you to notice in verse 26 that this is exactly what Jesus focuses on.
और 26 पद में जो है बिल्कुल ऐसा ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह केंद्र बिंदु बनाते हैं या कहते हैं.
As he rebukes the men,
जब उसने चेले लोगों को डांटा,
as he preaches from the prophets,
जब उसने भविष्यद्वक्ताओं से प्रचार किया,
in verse 26,
और 26 पद में,
he preaches the gospel and the glory,
और उसने मसीह का प्रचार किया,
of the
और मसीह का क्रूस, मसीह का सुसमाचार और मसीह की महिमा.
Let's see if we can all see the gospel in verse 26.
और 26 पद में आइए हम देखते हैं क्या आप लोगों को वहां पर सुसमाचार दिखाई दे रहा है.
Jesus says in the verse that it was necessary for the Messiah to suffer these things.
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मसीह के लिए आवश्यक था कि वो दुख उठाए.
The sufferings of Jesus refer to the cross and the death of Jesus.
और जो दुख उठाना है यहाँ पर वो यीशु मसीह के क्रूस की क्रूस को दिखाता है, दर्शाता है.
And Jesus said that that message was contained in the Old Testament.
और यीशु मसीह यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि ये जो संदेश है दुख का ये पुराने बाइबल पुराने करार में या नियम में वहां पर लिखा हुआ है.
So if we're preaching from the Old Testament, we should be preaching the gospel of Jesus.
तो जब हम पुराने नियम में से प्रचार करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यीशु मसीह का क्रूस की तरफ जरूर बताएं.
But verse 26 is not only about the gospel of Jesus, it's also about the glory of Jesus.
लेकिन 26 पद ही केवल दुख के बारे में ही नहीं है यीशु मसीह के परंतु उसकी महिमा के बारे में भी है.
Verse 26 gives us a reference to the resurrection and the ascension of Jesus.
और जो 26 पद है ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है और उसका जो स्वर्ग आरोहण होता है उसके बारे में बताता है.
The verse says, after the Messiah suffered, then he entered his glory.
और जो ये पद है ये बताता है कि दुख उठाने के पश्चात मसीह स्वर्ग में चला गया.
So the message of Jesus from the Bible is the gospel and the glory of the Messiah.
तो जो परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर का जो संदेश है पवित्र बाइबल में से वो क्या है. एक तो यीशु मसीह का सुसमाचार है और दूसरा परमेश्वर की महिमा है.
ओके, बिफोर वी लीव दिस चैप्टर लुक एट वर्स 44.
और इससे पहले कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें तो 44 पद देख लीजिए आप.
In this passage, Jesus is now talking with the disciples.
और अब वो जो है शिष्यों से बात कर रहा है.
It's the same message he told to the two men on the road.
और ये वही संदेश है जो उसने दो मनुष्यों को बताया सड़क पर.
In verse 44, let's please read that.
और 44 पद भी कृपा करके कोई पढ़ दीजिए जिसको नींद आ रही हो.
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों.
थैंक यू सिस्टर. सो आई वांट यू टू नोटिस द वर्ड्स लॉ ऑफ मोसेस, प्रॉफिट्स एंड साम्स.
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूसा की व्यवस्था, तीन शब्द हैं, मूसा की व्यवस्था, नबियों की व्यवस्था और भजन की पुस्तक.
And I also want you to notice the words written about me.
और जो दूसरा शब्द है यहाँ पर मुख्य है वो है कि मेरे बारे में लिखा हुआ है.
Okay, Jesus used the same Old Testament that you and I have in our Bible today.
और प्रभु यीशु मसीह, सुनिए इधर ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, चेलों से बात कर रहे हैं, वो उसी पुराने नियम से बात कर रहे हैं जो हमारे पास है आज.
ओके, इज द हिंदी बाइबल इन द सेम ऑर्डर एज द इंग्लिश?
यस.
ओके, सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन जीसस ओल्ड टेस्टामेंट एंड योर ओल्ड टेस्टामेंट वाज द ऑर्डर ऑफ द बुक्स.
और यीशु जो हमारे बीच में और यीशु मसीह में थोड़ा सा जो फर्क है, जो बाइबल में जो फर्क है वो ये है कि जो अनुक्रमण समझते हैं आप लोग बाइबल, जैसे उत्पत्ति और उसके बाद में निर्गमन, शुरू में ये ऐसे नहीं था जब यीशु मसीह का समय था, बस इतना ही फर्क है. अभी इसको एक ऑर्डर दिया गया है लेकिन पहले ये ऐसे नहीं था.
एंड जस्ट ब्रदर, एज यू ट्रांसलेट प्लीज एक्सप्लेन एवरीथिंग एज मच एज यू नीड टू प्रीच, यू नो, यू डोंट हैव टू बी जस्ट, या, एक्सप्लेन एनफ ऑफ द ब्रदर्स अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे कैन कीप यू ऑनेस्ट, सो दे कैन मेक श्योर यू आर नॉट प्रीचिंग योर ओन सर्मन अबाउट समथिंग एल्स. Okay.
ये बोलेंगे जितना ज्यादा आप बता सकते हैं समझा के उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपना अलग ही संदेश शुरू कर दें.
Okay, so Jesus had the exact same books in his Old Testament as you do. They were simply in a different order.
यही पुस्तकें थी जो यीशु मसीह के पास थी पुराने नियम में, लेकिन ये ऑर्डर नहीं था, अनुक्रमण नहीं था जो आज हमारे पास है.
Okay, our Old Testament is organized chronologically.
और हमारा जो पुराना नियम है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1, 2, 3 करके उनका जो पुस्तकों की संख्या है वो अनुक्रमण में दी हुई है.
Jesus' Old Testament was organized according to theme.
और जो उस समय का यीशु मसीह के समय का जो पुराना नियम था वो जो थीम थे या शीर्षक थे उस समय के उनमें बांटा हुआ था.
Okay, and there were 3 large sections to Jesus' Old Testament.
और यीशु मसीह के पुराने नियम में जो है 3 वर्गीकरण थे, 3 भाग थे मुख्य.
The law,
व्यवस्था,
the prophets,
और भविष्यद्वक्ता,
and what's called the writings, the wisdom literature,
और जो बुद्धि का जो बुद्धि का जो साहित्य है वो वाला नीति वचन है और भजन संहिता है.
Okay, but that third section, the wisdom literature, began with the book of Psalms, which of course is the biggest book.
और जो बुद्धि का जो साहित्य है वो भजन संहिता की पुस्तक से शुरू होता है जो आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी पुस्तक है.
So if someone in Jesus's time wanted to summarize the entire Old Testament, they would say,
प्रभु यीशु मसीह के समय में अगर कोई पुराने पूरे संपूर्ण पुराने करार पुराने नियम को कोई करेगा समझाएगा,
they would say the law, the prophets and the song.
तो ये 3 बातें कहेंगे, व्यवस्था और फिर भविष्यद्वक्ता और फिर बुद्धि की पुस्तकें या भजन की पुस्तकें.
Okay, so let's just look again at verse 44.
और 44 पद को फिर से देख लें.
Jesus does not only refer to the entire Old Testament.
और प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण पुराने नियम को नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर.
He also says, it is written about me.
और वो इसको बताते ही नहीं है पुराने नियम के बारे में लेकिन कहते हैं कि उसमें मेरे विषय में लिखा हुआ है
Okay, so on the road with the two men, Jesus says the entire Old Testament is about Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह एमाउस के रोड पर दो लोगों से बात करते हुए कहते हैं कि ये जो संपूर्ण व्यवस्था है ये मेरे बारे में लिखी हुई है
And with the disciples, Jesus says the entire Old Testament is about Jesus.
और चेलों से भी वो यही बात कहते हैं कि जो पूरा पुराना नियम है वो पूरा यीशु मसीह के बारे में है
Now remind me one more time what happened at the very beginning of that chapter Luke 24.
और फिर से मुझे बताइए कि लुका के 24 अध्याय की शुरुआत में क्या हुआ था
Yeah, the resurrection of Jesus Christ from the dead.
और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था
Now friends, I find it wonderfully encouraging
और प्रिय मित्रों उस घटना को देख करके मुझे बड़ा उत्साह मिलता है
that the risen Jesus
वो जो पुनरुत्थान हुआ हुआ मसीह है
used a Bible to explain the gospel and his glory
और पुनरुत्थान हुआ हुआ मसीह ने क्या किया उसने प्रचार किया सुसमाचार को दिखाया और परमेश्वर की महिमा को भी दिखाया ये उनका मुख्य लक्ष्य था
I believe Jesus is showing us that if we want to know him today,
और मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हों कि अगर हम आज उसको जानना चाहते हैं
we have the same resource
तो हमारे पास वही संसाधन है
that he used to show himself after he rose from the dead
और हमारे पास भी वही संसाधन है जो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद में लोगों को बताया था सिखाया था
And in a way, we're in even a more privileged position because we also have the New Testament.
और असल में हम लोग जो हैं हम और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास में और नए नियम में और भी ज्यादा पुस्तकें हैं लेख हैं
Okay, notice verse 46.
और 46वां पद देखिए आप
Please read it.
कृपा करके पढ़ें
और उसने कहा यह लिखा है कि मसीह जो उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा
Amen.
Amen.
Notice the word it is written.
और आप इस शब्द को देखिए यहां पर लिखा हुआ है यह लिखा है
So again we're talking about the Old Testament scriptures.
तो इसका मतलब यह है कि हम फिर से पुराने नियम की बात कर रहे हैं
And notice also that Jesus is explaining the gospel from the scriptures.
और ये भी देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कहां से बात कर रहे हैं वचन से पुराने नियम में से ये नहीं कि बाहर से इधर उधर से उठाई और कहानी बता दी
In this verse, Jesus mentions his suffering.
और यहां पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख के बारे में बात की
his death.
उसकी मृत्यु
And his resurrection.
और उसका जी उठना के बारे में बताया
And friends, in short, that is the gospel.
और प्रिय मित्रों यही सुसमाचार है
The death, burial, and resurrection of Jesus.
मसीह की मृत्यु उसका दफनाए जाना और उसका रेजरेक्शन या उसका पुनरुत्थान
Okay, so once again we're laying the foundation that the Bible is mainly about Jesus.
और फिर से आपको रिमाइंड करता हूं बताता हूं कि जो बाइबल है वो मुख्य रूप से हमारे बारे में नहीं परंतु परमेश्वर के बारे में है
एंड मोर स्पेसिफिकली द बाइबल इज अबाउट द गॉस्पेल एंड द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट
और बहुत ही ध्यान और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बता कहना चाहूंगा कि जो बाइबल है वो सुसमाचार के बारे में है और परमेश्वर की महिमा के बारे में है
okay. So again, if we preach or study from the Old Testament and we don't look to Jesus Christ and his gospel work, then we're not understanding the Old Testament properly.
तो प्रिय मित्रों अगर हम पवित्र बाइबल में पुराने नियम में देखते हैं और हमें वहां पर मसीह नहीं दिखाई देता हम उसका प्रचार वहां से नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अभी तक सुसमाचार को या वचन को संपूर्ण तरीके से नहीं समझे हैं
ओके I'd like for the children to help me with a couple of Old Testament Bible stories
और मैं बच्चे से कुछ कहना चाहता हूं कि कुछ पुराने नियम की जो कहानियां हैं कुछ आप बताएंगे.
Okay, can any of you children help me remember some of the details of David and Goliath?
बच्चों आप लोग बता सकते हो दाऊद और गोलियत की कथा में से कुछ डिटेल या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद हो?
Anything about that story that you remember, please share it with us.
बताओ आप लोग.
Anything.
कुछ भी उसी कहानी में से बताइए. क्या क्या याद आया आपको?
Let's see. How did David defeat Goliath?
David ने गोलियत को कैसे हरा दिया? जल्दी बताओ. देर करने की जरूरत नहीं.
जोर
से बोलो बेटा.
Yeah, he had five stones.
पांच पत्थर से.
How did he kill Goliath?
और गोलियत को उसने कैसे मार दिया? कैसे मारा?
Yeah, very good. Okay, do you remember that David had to wear something, or he tried to wear something out on the battlefield? What did he try to wear?
David ने क्या पहना था हराने के लिए?
Yeah, do you remember? He tried to wear Saul's armor.
और उसने जो सॉल के साउल राजा के कपड़े पहने थे.
It was too big. David was just a little boy. Yeah, yeah. Okay.
छोटे बच्चे.
From this Old Testament story,
तो इस छोटी कहानी में से,
are we supposed to think, oh, I should be more like David?
क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ओ मुझे तो दाऊद के जैसे होना चाहिए?
Should we conclude, I need to have more courage against my enemy?
क्या हमें यह सोचना चाहिए कि मुझे मेरे शत्रु के ऊपर में जीतने के लिए ज्यादा उत्साह चाहिए?
Or maybe if we feel like we're being defeated, maybe we need better stones, better strategy in our bag.
और हमें जो है गोलियत जैसे आदमी को हराने के लिए जो है और अच्छा मेथड चाहिए या मजबूत वाले पत्थर चाहिए?
Friends, this is not the meaning of the story.
और उस कहानी का ये मीनिंग नहीं है, ये अर्थ नहीं है.
Remember, it's not mainly about us. It's mainly about the gospel and the glory of Christ.
तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा किसके बारे में है? यीशु मसीह के सुसमाचार और परमेश्वर की महिमा के बारे में. कुछ भी लो आप बाइबल में से, ये जो घटना थी साधारण सा उदाहरण था.
Okay, let's just imagine the story of David and Goliath together.
और दाऊद और गोलियत की इस कहानी को हम थोड़ा सा सोच लें.
Instead of seeing ourselves as the champion, as David, let's look to Christ.
हम जो हैं इस कहानी में अपने आप को चैंपियन दिखाने की बजाय आइए हम यीशु मसीह की तरफ देखें.
I want you to imagine the crowd of Israel standing on one side, very fearful, very terrified.
और वहां पर जब क्रूस दिया जा रहा था मसीह को तो बड़ी भीड़ थी और वो बहुत ही डरे हुए थे, भयभीत थे लोग.
I want you to imagine Goliath coming out to the middle of the battlefield, taunting and embarrassing the people of God.
और जो जब लड़ाई हो रही थी तो वहां पर गोलियत आ रहा था और आकर के उसने परमेश्वर के लोगों को बड़ा क्या बोलते डांटा और बुरा भला कहा और ताने मारे.
I want you to imagine one little boy going out to the battlefield to face this great giant.
और आप मैं चाहता हूं कि आप उसे छोटे लड़के के बारे में सोचें जो इतने बड़े आदमी को हराने के लिए जा रहा था.
And then after the battle, when the giant has been killed,
और युद्ध के बाद में जब वो जो योद्धा था जब वो मारा जा चुका,
I want you to imagine all of Israel rejoicing and celebrating.
तो पूरा इज़राइल कितना खुशी था, कितना आनंदित था.
This is a picture, though it's a true story, it's also a picture of what God has done for His people in Christ.
और ये वो असल में ये वो तस्वीर थी, ये चित्रण है उसका कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने लोगों के लिए शैतान को हरा करके क्या उपलब्धि की है.
Instead of thinking to ourselves, I need to be more like David.
और मुझे अपने बारे में न सोच करके यीशु मसीह के बारे में सोचें.
We should say, thank you for the true and greater King that went out and defeated the enemies of God's people so that we could all have the victory.
और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो उसने एक ऐसे राजा का इंतजाम किया जिसने बाहर जाकर के उस बड़े योद्धा को हरा दिया और एक बड़ी विजय लेकर के आया.
Similarly, the Old Testament accounts are about the gospel and the glory of Jesus Christ.
और इसी प्रकार से जो पुराने नियम के जो संदर्भ हैं कहानियां हैं वो यीशु मसीह के सुसमाचार और परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित हैं.
The story of Jonah in the fish's belly is mainly about the resurrection of Jesus.
और योना की जो घटना है जब वो मछली के पेट में रहा तीन दिन तो वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताती है.
In Jonah, it's as if a resurrected prophet goes to a wicked city so that they can receive God's mercy.
और योना की कहानी में जैसे कि पुनरुत्थान हुआ हुआ एक नबी वहां पर जाता है उस दुष्ट सिटी में शहर में और वो वहां पर सुसमाचार सुनाता है.
Do you know anybody else like that?
क्या आपको और भी कोई याद है जो जिसने इस तरीके से किया?
Jesus is the resurrected prophet who goes to the wicked people so that we too can receive God's mercy.
और इसी तरीके से यीशु मसीह है जो उसी का प्रकार उसको प्रकार बोलते हैं. तो यीशु मसीह उसका प्रकार है जो पुनरुत्थान हुआ और आकर के वो सुसमाचार सुनाता है और हमारे लिए विजय लेकर के आता है.
Okay, so friends, we're laying the foundation that the Bible is mainly about the gospel and glory of Jesus Christ.
और फिर से कहूंगा कि जो बाइबल है वो परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर की महिमा के ऊपर आधारित है निर्धारित है.
But how will you and I understand the Bible properly?
लेकिन कैसे आप और हम इस बाइबल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं?
Does it depend on us being very intelligent and very smart?
क्या ये बाइबल को समझने के लिए क्या हमें इंटेलिजेंट बुद्धिमान या बड़े स्मार्ट होना पड़ेगा?
The Bible tells us that the apostles were very ordinary men. In fact, even uneducated men.
और बाइबल हमें बताती है कि जो शिष्य लोग थे प्रेरित लोग थे वो कैसे थे? निरक्षर थे अनपढ़ थे और सीधे साधे थे.
So interpreting the Bible correctly and seeing Jesus Christ from the scripture doesn't depend mainly on our intellect.
तो बाइबल को समझने के लिए जो है हमारा जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है उस पर आधारित नहीं है.
Notice verse 45.
और 45 पर देखिए आप 24 का 45.
Please read.
तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी.
Amen. Who opened their mind?
और किसने उनकी बुद्धि को खोल दिया?
Jesus.
परमेश्वर ने यीशु मसीह ने.
But specifically, the resurrected, glorified Jesus.
और अधिक अच्छे तरीके से कहें तो उस यीशु मसीह ने जिसका पुनरुत्थान हुआ था.
He opened their mind to understand the scriptures.
और उसने जो है उनके दिमाग को खोल दिया कि वो पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सकें.
Friends, if we will benefit from this conference together, we also need the risen Jesus to show us himself from the scriptures.
और अगर मित्रों अगर हम चाहते हैं कि हमें भी ये वचन समझ आए तो हमें भी वो पुनरुत्थान हुआ मसीह की जरूरत है हमारे बीच में.